बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। माँ सुमित्रा उपदेश दे रही है अपने पुत्र लक्ष्मण को, एक सेवक का धर्म समझाते हुए, एक भक्त का धर्म समझाते हुए। यूं समझिए, भक्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं एक साधक के जीवन में आती हैं, उनसे माँ सुमित्रा अपने पुत्र को सचेत कर रही है। इन बाधाओं से बचे रहोगे तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का अविरल प्रेम तेरे हृदय में पैदा होगा, नित्य नवीन क्षण प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम तेरे हृदय में पैदा होगा। राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह, लक्ष्मण स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। विकार रहित होके मन कर्म वचन से यदि तू प्रभु राम की सेवा करेगा तो तेरे अंदर विशुद्ध अविर प्रेम प्रभु राम के प्रति पैदा होगा, नित्य बढ़ने वाला प्रेम, वहीं रुक जाने वाला प्रेम नहीं, नित्य बढ़ने वाला प्रेम, क्षण प्रति क्षण वर्धनम बढ़ने वाला प्रेम। सबसे पहली बाधा का नाम लिया राग, सबसे पहली एवं सबसे प्रमुख बाधा भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में राम के अतिरिक्त किसी दूसरे से राग। एक साधक को इससे बच के रहने की आवश्यकता, रहना तो है संसार में लेकिन राग अर्थात अनुराग परमात्मा से, इनसे राग नहीं, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं। राग रहित जीवन ही अनुरागी जीवन बन सकेगा। मेरी माता सज्जनों, ये अध्यात्म की शर्तें हैं। यदि कोई साधक कोई भक्त इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो यूं समझिएगा अभी अध्यात्म उसके जीवन में नहीं आया है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अध्यात्म इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, उनकी शर्तें बहुत स्ट्रिक्ट इस प्रकार की। परमात्मा से अनुराग चाहते हो तो संसार से राग रहित आपको होना होगा, अन्यथा अनुराग नहीं मिलेगा। माँ सुमित्रा कहती है मेरे प्रति राग नहीं, उर्मिला के प्रति राग नहीं, मानो किसी के प्रति भी राग नहीं, सिर्फ भगवान राम के प्रति, सीताराम के प्रति तेरा अनुराग हो। माँ ने स्वप्न की बात कही तो उसी वक्त प्रण ले लिया, सो गई नहीं, 14 वर्ष तो स्वप्न कहां से आएगा, तब जाके सफलता मिलती है। ऐसी नहीं, लक्ष्मण भी उतने ही पूज्य हैं जितने राम एवं माँ सीता, तीनों इकट्ठे हर वक्त। भरत जी महाराज साथ नहीं है, हनुमान जी महाराज साथ हैं, लक्ष्मण साथ हैं, माँ सीता के, सीताराम के साथ कौन हर वक्त, लक्ष्मण। राम दरबार किसे कहते हैं, राम लक्ष्मण सीता एवं हनुमान जी, भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, वहां पर लक्ष्मण जी साथ हैं। एक सेवक कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए, माँ सुमित्रा समझा रही है। रोष, कई ने जो कुछ किया है उस पर कभी रुष्ट नहीं होना लखन, ये माँ कह रही है। जिसने अनर्थ किया है उस पर रुष्ट नहीं होना। भगवान राम की आज्ञा तेरे अनुसार तुम्हें अनुचित भी लगे तो रुष्ट नहीं होना, सहर्ष उसका पालन करना। कैसी शिक्षाएं हैं मां की, एक भक्त के साथ होना चाहिए, एक सेवक सच्चा सेवक के साथ होना चाहिए। भरत को बैठे बिठाए राज्य मिल गया, अतएव भरत के प्रति तेरे हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मत की बात चल रही थी सच, पद मिलते ही मत आता है। आज थोड़ी सी अपनी सेवकाई की बात करेंगे। हम सब भी जितने भी सेवक बनते हैं, मन में सेवक का पद मिलता है। तो पद मिलने पर क्या होता है, तनिक सोच विचार करते हैं इस पर। मद की तुलना शराब के नशे से की जाती है। पद के साथ यदि अहम जुड़ता है तो मद आता है। पिछली बार भी आपसे कहा था पद पद, इसके थोड़ा कोने में थोड़ी सी घुंडी लगा दी जाए तो मद हो जाता है। मन पद मद में बदलते कोई बहुत देर नहीं लगती। यूं कहिएगा, पद मिलते ही यदि मद नहीं आता तो बड़े अचंभे की बात होगी। आता ही है नशा। तो नशे में क्या होता है, आज एक छोटी सी उदाहरण से शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, हम किस प्रकार बिहेव करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक शराबी रात को सड़क पर चल रहा है, उसी समय हाथी के ऊपर राजा साहब की एक सवारी निकली है। राजा साहब बैठे हैं, छत्र ऊपर है, आगे पीछे सिपाही चल रहे हैं। सवारी निकली है, चलते चलते जहां शराबी खड़ा है, लड़खड़ा रहा है। शराबी की चाल बड़ी अजीब सी हुआ करती है, लड़खड़ा रहा है। उस लड़खड़ाते हुए व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं कि तूने शराब पी हुई है, मानो राजा समझ गए हैं कि इसने शराब पी हुई है। उसके पास हाथी पहुंचा है, पूछता है, रे हाथी वाले, मैं शराब, रे हाथी वाले, हाथी बिकाऊ है, कितने का बेचेगा? सिपाहियों ने पकड़ा, पिटाई करनी चाहिए, राजा ने रोका, इसका दोष नहीं है, नशे में है, इसका पता नोट कर लो। कल राजा का दरबार लगा, इसको बुलाया है, पेश करो इसे। राजा ने बहुत नम्रता पूर्वक पूछा, रात को आप हाथी खरीदना चाहते थे, सौदा नहीं हो पाया था, बोलो क्या दोगे? बहुत नम्रता पूर्वक राजा ने प्रश्न किया। कहा, प्रजापालक, मैं तो आपकी प्रजा हूं, मुझमें ऐसा समर्थ कहां कि मैं आपका हाथी खरीद सकूं। वो हाथी खरीदने वाला रात को चला गया, मैं अब वो नहीं हूं। एक नशा था, वह उतर गया। कुर्सी को सलाम जिसे कहते हो, यही चीज है। मानो पद प्राप्त हुआ, सत्ता प्राप्त हुई तो नशा आ गया थोड़े समय के लिए, और आप उस नशीले व्यक्ति को सलाम करते हो। इसे कुर्सी का सलाम कहा जाता है, कुर्सी को सलाम हो रही है, व्यक्ति को नहीं। आपको पता है व्यक्ति नशे में है, वह सलाम डिजर्व नहीं करता। कुर्सी हिलते ही, कुर्सी खत्म होते ही, कुर्सी से उतरते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इस मद की तुलना शराब के नशे के साथ। हे देवी सचनो, किसी नशा किया हुआ हो उससे गलतियां ना हो, उससे भूल ना हो, वह लड़खड़ाए ना, वह किसी खड्डे में ना गिरे, ये कभी हो नहीं सकता। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति तो बेचारा कभी किस्मत का मारा, कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार कभी कभार गिरता है, लेकिन नशे वाला तो रोज गिरता है, उसे रोज कहीं ना कहीं से उठाना पड़ता है, वह नशे में है। मत का नशा भी इसी प्रकार का है। हमें सेवकाई का पद मिलता है, किसी को कोई सेवा मिलती है। श्री राम शरणम की बात करिए, कहीं की विवाद कीजिए, कोई सेवा मिलती है, किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है, तो हमारे अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, हमारा आचरण किस प्रकार का हो जाता है। बिल्कुल ये हमें समझना चाहिए कि ये आचरण हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा नॉर्मल स्वभाव नहीं है। हम शुरुआत ही अस्वाभाविक करते हैं। घर में हमें गिलास यहां से उठा के तो किचन में रखने की आदत नहीं है, यहां आके जब पोछे लगते हैं तो देखने वाले पर चकित होते हैं, ये क्या यही व्यक्ति है जो घर में था और यहां, एक ही है क्या ये दोनों? होना तो यूं चाहिए, देवी सच है, यहां से जो कुछ पाया है ऐसा कुछ घर में जाके करना चाहिए तो आपको होगा कि आपने यहां की सेवकाई कुछ सीखी है, अन्यथा तो ये मद देके रहेगा, क्या होगा? देखो कल का बच्चा, उसकी ड्यूटी लगा दो आप जूतों पर खड़े होने की, पानी पिलाने पर, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी चाल औरों से अलग हो जाती है। जैसे शराबी की चाल हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही मानो चाल बदल गई तो समझ लीजिएगा इसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है मत का। उसके अंदर अपने आप को विशिष्ट, अपने आप को विशेष प्रोजेक्ट करने की भावना जागृत हो जाती है, मानो प्रदर्शन दूसरा दुर्गुण साथ ही साथ आ गया। मात्र इतना ही नहीं, औरों से प्रशंसा चाहता है, औरों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वह किस लिए कर रहा है? और मुझे देखें और मेरी प्रशंसा करें ताकि मेरा नशा और बढ़े। कैसी बदकिस्मती की बात है, यहां की सेवकाई को साधना व्यक्ति न बना के जिसमें अहम मरता है, जिसमें ये सब चीजें मरती हैं, यदि वह बढ़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आदमी औरों से प्रशंसा सुनना चाहता है, इसलिए अपना आचरण औरों से भिन्न करता है, थोड़ा और बड़ा होता है। ये तो शुरुआत की बातें हुई, थोड़ा और आगे होता है, उसकी सेवा के दिन बढ़ते हैं। साधक जनों, ये सिर्फ यहीं की बातें नहीं है, ये हम सब की बातें हैं, जहां कहीं भी है, जिस किसी क्षेत्र में भी हम हैं, हमारा यही हाल है। पद मिलते ही, सत्ता मिलते ही ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाया करती हैं। अब वो मां सुमित्रा कहती है, प्रभु राम की आज्ञा लेके करना सब कुछ, पहले करके उन्हें ना बताना। हमारा स्वभाव पद प्राप्त होते ही मद में जब चूर हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव बतलाने का हो जाता है, पूछने का नहीं रहता। हमने पूछना बंद कर दिया है, अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। आज्ञा लेने में और बतलाने में जमीन आसमान का अंतर है। बतलाने में देवियों सज्जनों, जिसको आप बतला रहे हो वह जिम्मेदार नहीं है। जब आप कुछ पूछते हो, आज्ञा लेते हो, तो फिर वह जिम्मा लेता है। पूछने वाला व्यक्ति छोटा होता है ना, तो मन में आता है कि मैं क्यों पूछूं, मैं अब छोटा थोड़ी हूं, अतएव पूछता नहीं है। और आगे बढ़िए, उसके पास थोड़ी सी जानकारी अधिक हो जाती है, अतएव इतनी आसानी से वह बताता भी नहीं है। बताने से औरों को पता लग जाएगा, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी का मत, जो कुछ मैं जानता हूं वह किसी को पता ना लगे, कोई पूछेगा तो देखा जाएगा। बताने वाला बिन पूछे बताता नहीं है। इस साधक चुनू मद के ही छोटे छोटे चिन्ह है, कह रहा हूं छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ये आपको भक्ति में साधना में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे साधक जनों आजकल रामायण जी में चर्चा चल रही है, दूसरों के दोष देखने और वर्णन करने की, दूसरों के दोष देखना अर्थात पर दोष दृष्टि, उन दोषों को वर्णन करना अर्थात निंदा या चुगली। संत महात्मा कहते हैं इससे बढ़ के घातक अवरोधक भक्ति के मार्ग में और कोई नहीं है, ये अभिमान से भी ऊपर है। जिस जिस किसी की साधना जहां जहां भी वो हैं वह रुकी हुई है, तो उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कहीं हमारे अंदर दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि तो नहीं है। दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि कभी दिव्य नहीं हो पाएगी, वह कभी परमात्मा को नहीं देख पाएगी। कितना बड़ा अवरोधक। ठीक इसी प्रकार से सत्क्षण ये पद का मत है। ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुनः आपसे अर्ज करूंगा, पद को अहम का बल मिलते ही मत हो जाता है। साधना भक्ति सत्संगति इस अहम को मारने के लिए है, ना कि इसको और बढ़ाने के लिए है। तेरे अंदर किसी प्रकार का मद लक्ष्मण ना आए, तेरे अंदर ऐसी सोच ना हो आखिर मुझे चुना गया है प्रभु की सेवा के लिए, तो स्पष्ट है मेरे अंदर कुछ है। कैसी सीख है मां की, कभी ऐसी भूल न करना, तेरे अंदर इस प्रकार का मद ना आए। यदि मैं साथ ना आता तो बेचारे रुल जाते, कौन इनकी सेवा करता, कौन इनकी खिदमत करता, इनको स्वयं को तो अभ्यास है नहीं जंगल जाके लकड़ियां काटने का या चुनने का या फल लाने का। यदि मैं ना होता तो इनका कौन कुछ करता। ये मद तेरे दिमाग में भूत से भी कभी ना आए, स्वप्न में भी कभी ना आए। साधक जो मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है, तनिक सोच विचार करें, मंथन करें, तो लगता है हर चीज हमारे लिए ही कही गई है। एक त्रुकुट और रह गया है, मोह। अगले रविवार को करेंगे साधक जनों चर्चा इस पर, लंबी चर्चा है। मात्र मोह से ही नहीं, जितने भी रोग अब तक कहे गए हैं, हम सब के सब इन सब से ग्रस्त हैं। मोह भी ऐसा ही रोग है जिससे हम सब ग्रस्त नहीं त्रस्त भी हैं, बहुत पीला देता है, एक पग भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तनिक साधना से, परमेश्वर कृपा से व्यक्ति कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है। ये मोह का पुल इतना स्ट्रांग है, घर जाने तक ही आपको घसीट के नीचे फेंक देता है। जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हो, गिरते हो, तो उतनी चोट अधिक लगती है। रोज चोटें खाते हैं, रोज पिटते हैं इस संसार से, इस परिवार से जिनके प्रति मोह है। लेकिन मोह एक ऐसी चीज है जो मरती नहीं है। सब मर गए हैं, सबके सब मर गए हैं। लंकेश रावण की 100,000 संतान सवा लाख उनके संबंधी सबके सब मर गए हैं, एक रावण नहीं मर रहा, उसे ही मोह का प्रतीक कहा जाता है। या इसे राम मारेंगे, या इसे कोई राम का सेवक कोई प्यारा मारेगा। साधक नहीं मार सकता। तो साधक जनों, अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।